नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पुराने नियम में से यिर्मयाह नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन को सुनने और उसमें से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यिर्मयाह नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम फिर से यिर्मयाह की पुस्तक से अध्ययन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि प्रत्येक के जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए। और हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार की चिंता, दबाव और तनाव में हैं। प्रभु जी, आप उन्हें अपनी शांति प्रदान करें, आज के वचन के द्वारा से उन्हें हिम्मत दें, हम सबसे बोले और बातचीत करें। फिर से एक बार हम में से प्रत्येक को आपके हाथों में सौंप देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इन दिनों यिर्मयाह नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि यिर्मयाह को बंदी बना लिया गया था और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यिर्मयाह की पुस्तक 38 अध्याय से हम देखते हैं, जिसका विषय है यिर्मयाह मृत्यु से बाल बाल बचा। अध्याय 38 में यिर्मयाह बंदी गृह में है, परंतु वह निष्ठापूर्वक प्रजा को परमेश्वर का संदेश सुना रहा है, जबकि उसका जीवन मौत के साय में है। यहूदा के हाकिम उसे देशद्रोही और प्रजा को हतोत्साह करने का दोषी ठहरा रहे हैं, अतः उन्होंने राजा से आज्ञा लेकर उसे काल कोठरी में डाल दिया। तो आइए अब हम आगे बढ़ें। यिर्मयाह की पुस्तक 38 अध्याय उसके 6 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मल्किय्याह के उस गढ़े में जो पहरे के आंगन में था रस्सियों से उतार कर डाल दिया। उस गढ़े में पानी नहीं, केवल दलदल था और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। परमेश्वर ने उसकी सहायता में किसी को भेजा, जिसे हम 7-13 पद में देखते हैं। यह एक रोमांचकारी राहत कार्य था। मैं आशा करता हूं कि आप इस भाग को सावधानी से पढ़ेंगे। अब सिद्दिकिया यिर्मयाह से गुप्त में पूछता है कि परमेश्वर क्या कहता है। वह यिर्मयाह से प्रतिज्ञा करता है कि वह उसके विरोधियों से उसकी रक्षा करेगा। तब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 38 अध्याय उसके 17 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यिर्मयाह ने सिद्दिकिय्याह से कहा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जो इस्राएल का परमेश्वर है, वह यों कहता है, यदि तू बेबीलोन के राजा के हाकिमों के पास सचमुच निकल जाए तब तो तेरा प्राण बचेगा और यह नगर फूंका न जाएगा और तू अपने घराने समेत जीवित रहेगा। वह फिर वही बात कहता है कि आत्मसमर्पण कर दे, तू उसका सामना नहीं कर पाएगा। यिर्मयाह परमेश्वर के वचन को फिर से सिद्दिकिय्याह को बताता है। लेकिन क्या होता है, आइए पढ़ें यर्मिया 38 उसके 18 से 20 पद में। परंतु यदि तू बेबीलोन के राजा के हाकिमों के पास न निकल जाए तो यह नगर कसदियों के वश में कर दिया जाएगा और वे इसे फूंक देंगे और तू उनके हाथ से बच न सकेगा। सिदकियाह ने यर्मिया से कहा, जो यहूदी लोग कसदियों के पास भाग गए हैं मैं उनसे डरता हूँ, ऐसा न हो कि मैं उनके वश में कर दिया जाऊं और वे मुझसे ठट्ठा करें। यर्मिया ने कहा, तू उनके वश में न कर दिया जाएगा, जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं उसे यहोवा की बात समझकर मान ले, तब तेरा भला होगा और तेरा प्राण बचेगा। मेरे प्रियो, यर्मिया सिदकिया राजा से विनती करता है कि वह अपनी और अपनी प्रजा की जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर दे। यर्मिया का सुझाव अस्वीकार करने से वह अपने देश का विनाश के मार्ग पर ले जा रहा था, और इससे पता चलता है कि सिदकिया डरपोक मनुष्य था। वह सबसे समझौता करता था, सबको प्रसन्न करना चाहता था, वह एक सच्चा राजनीतिज्ञ था। परिणाम यह हुआ कि वह किसी को भी प्रसन्न नहीं कर पाया। आज हम में से कई लोग भी ऐसा ही करते हैं, वे लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन आप इस बात को भली भांति जान लें कि आप सबको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, और यही बात सिदकिया के साथ भी हुआ। यर्मिया की पुस्तक 38 अध्याय उसके 21 और 22 पद में लिखा हुआ है, पर यदि तू निकल जाना स्वीकार न करे तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा बताई है वह यह है, देख यहूदा के राजा के रनवास में जितनी स्त्रियां रह गई हैं वे बेबीलोन के राजा के हाकिमों के पास निकालकर पहुंचाई जाएंगी और वे तुझसे कहेंगी, तेरे मित्रों ने तुझे बहकाया और उनकी इच्छा पूरी हो गई, और जब तेरे पांव कीच में धंस गए तो वे पीछे फिर गए हैं। यहां यहूदा के इतिहास के इस युग का अध्ययन स्पष्ट करता है कि उनकी महिलाएं अर्थात महिला समाज अत्यधिक भ्रष्ट था, और महिला समाज के भ्रष्ट होने का अर्थ है नैतिकता की आशा समाप्त हो गई है। वह मूर्ख राजा यर्मिया द्वारा परमेश्वर की चेतावनी को स्वीकार नहीं करता है, वह तो झूठे भविष्यद्वक्ताओं की झूठी आशा पर विश्वास करता है, और यही कारण है कि वह मुसीबत में पड़ता जाता है। मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 38 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 39 में यर्मिया द्वारा घोषणा किया गया नरसंहार को देखेंगे। आइए हम पढ़ें यर्मिया की पुस्तक 39 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, यहूदा के राजा सिदकिया के राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना समेत यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया, और सिदकिया के राज्य के 11वें वर्ष के 4थे महीने के 9वें दिन को उस नगर की शहरपनाह तोड़ी गई। आने वाले अगले पद में हम यरूशलेम का पतन को देखेंगे। सिदकिया और उसकी सेना रात के अंधेरे में भागकर निकल जाना चाहते थे, परंतु बेबीलोन की सेना उन्हें पकड़कर नबूकदनेस्सर अर्थात अपने राजा को सौंप देती है। हम पढ़ते हैं यर्मिया की पुस्तक 39 अध्याय उसके 6 और 7 पुत्रों को उसकी आंखों के सामने रिबला में घात किया और सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया। उसने सिदकिया की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बेबीलोन ले जाने के लिए बेड़ियों में जकड़वा रखा। मेरे मित्रों, यर्मिया के पुस्तक का अंतिम अध्याय इस भयानक समय का पुनरावलोकन करता है। उसमें उन्हीं बातों का उल्लेख है जो यर्मिया के ऊपर छाप छोड़ गई थी। वहां वह फिर कहता है कि बेबीलोन के राजा ने सिदकिया के पुत्रों को उसकी आंखों के सामने मार डाला और फिर उसकी आंखें निकाल दी। शत्रुओं द्वारा यर्मिया के मुक्ति को हम आगे देखते हैं। यह एक रोचक बात है कि नबूकदनेस्सर ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यिर्मयाह को मुक्त करके उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। यिर्मयाह की पुस्तक 39 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, उसको लेकर उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और उसकी कुछ हानि न करना, जैसा वह तुझसे कहे वैसा ही उससे व्यवहार करना। परमेश्वर अपने विश्वास योग्य भविष्यद्वक्ता की सुधि ले रहा था। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 39 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, और बेबीलोन के राजा के सब प्रधानों ने लोगों को भेजकर यिर्मयाह को पहरे के आंगन में से बुलवा लिया और गदल्याह को, जो अहिकाम का पुत्र और शापान का पोता था, सौंप दिया कि वह उसे घर पहुंचाए। तब से वह लोगों के साथ रहने लगा। यह उस युग का आरंभ है जिसे हमारे प्रभु यीशु ने अन्य जातियों का समय कहा है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 24 पद में प्रभु के वचन हैं, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। मैं तो कहूंगा कि अन्य जातियां आज भी यरूशलेम को रौंद रही है। अन्य जातियों के हाथ में आज भी वहां का नियंत्रण है। इसराइल के हाथ में विलाप की दीवार को छोड़कर अन्य कोई धार्मिक स्थल नहीं है। प्रभु यीशु के वचन आज भी सच हैं। मेरे मित्रों, आज की पीढ़ी के लिए परमेश्वर के दंड के तथ्य को समझना कठिन है कि परमेश्वर किसी देश को, किसी परिवार को, किसी मनुष्य को दंड दे सकता है। यिर्मयाह ने 40 वर्ष परमेश्वर का संदेश सुनाया था। उसने उनके पाप को उजागर किया और उन्हें मन फिराव के लिए पुकारा। परमेश्वर उनके साथ धीरजवंत था और परमेश्वर का धीरज ही उनके लिए भ्रम का कारण ठहरा। इस कारण झूठे भविष्यद्वक्ताओं को अवसर मिला कि वे कहें, देखो यिर्मयाह की बात झूठी हो रही है, तो बहुत देर हो चुकी है। परमेश्वर धीरजवंत है, वह मनुष्य को अपने मार्ग पर चलने देता है और अंत में उसका कोई समाधान नहीं रह जाता। मेरे मित्रों, यह सच ही है कि परमेश्वर आज हम पर अनुग्रह किए जा रहा है। जिस प्रकार बच्चे पतंग उड़ाते हैं और लटाई से धागे ढील दिए जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि बच्चे फिर से पतंग को लटाई में लपेट लेते हैं, ऐसा ही परमेश्वर एक दिन मुझे और आपको भी अपने करीब लाएगा, अर्थात हमारे पापों का हिसाब हमसे लेगा। क्या हम उसके अनुग्रह को ध्यान दे रहे हैं? क्या हम उसके वचन पर ध्यान दे रहे हैं? ध्यान देने की आवश्यकता है। यहूदा इसका एक विशिष्ट उदाहरण है। परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा अंतिम पल तक उनसे विनती करता रहा, परंतु उन्होंने परमेश्वर की वाणी को तुच्छ जाना, और अंत में वह दिन आ गया जब नबूकदनेस्सर ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। मेरे मित्रों, आप जानते हैं कि मानव जाति सुनना नहीं चाहती है कि परमेश्वर न्याय करेगा। मनुष्य के लिए यह स्वीकार करना कठिन है कि परमेश्वर क्रोध कर सकता है। हम प्रायः सोचते हैं कि क्रोध करने वाला परमेश्वर पुराने नियम का है, नए नियम का परमेश्वर अलग है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर के क्रोध का उल्लेख नए नियम में पुराने नियम से कहीं अधिक है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 में प्रभु यीशु के द्वारा कही गई भय की बातों को आप पढ़ें। मत्ती 23 अध्याय उसके 29 और 33 पद में कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। तब वह कहता है, हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर के क्रोध के कटोरों के विषय में पढ़ें, जिसके तुल्य पुराना नियम कुछ नहीं कहता है। अतः यह कभी न कहें कि पुराने नियम का परमेश्वर क्रोध करने वाला और नए नियम का परमेश्वर प्रेम करने वाला है। मैं कहता हूं कि वह हर समय हर युग में प्रेमी परमेश्वर है जो क्रोध करता है। वह पाप का दंड देता है। आप परमेश्वर के क्रोध और उसकी दया को साथ साथ देखेंगे। परमेश्वर का सिंहासन अनुग्रह का स्थान है जहां दया और सहायता प्राप्त होती है, परंतु वही सिंहासन पृथ्वी का न्याय भी करेगा। आज के मनुष्य के लिए यह समझना बहुत कठिन है। परमेश्वर के नियम अपरिहार्य हैं और उन नियमों को तोड़ना दंड पाना है। मनुष्य के लिए यह तथ्य नैतिक और आत्मिक क्षेत्र में समझना बहुत कठिन है, जबकि प्रकृति में यह स्पष्ट प्रकट है। यदि आप मेरी बात न माने तो कुतुब मीनार पर से कूद जाएं। आप जान जाएंगे कि क्या होता है। आप प्रकृति के नियमों का पालन करके जी सकते हैं और उल्लंघन करके आप मर सकते हैं। मनुष्य का चांद पर पहुंचना एक महान उपलब्धि है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि यह तभी संभव हुआ जब उन मनुष्यों ने परमेश्वर के नियमों का पालन किया? जब उन्होंने यात्रा आरंभ की थी तब उनका लक्ष्य चांद नहीं, चांद की वह स्थिति था जो वह उनके वहां पहुंचते समय रखेगा। वे जानते थे कि उस समय चांद कहां होगा, क्योंकि जगत नियमों के अधीन है। यदि वे इन नियमों की अवहेलना करते तो वे अंतरिक्ष में खो जाते और वे मर भी जाते। मेरे प्रियो, मानव इतिहास से हमें यही सीखना है। हमें इस संसार की महान सभ्यताओं के अवशेषों को देखना है। वे गवाह हैं कि परमेश्वर बदला लेता है, दंड देता है। जब कोई देश ऊंचे सिद्धांतों और नैतिकता के ऊंचे स्तर से गिर जाता है और घृणित कार्य करता है, तब उसका पतन होता है और वह इतिहास से लोप हो जाता है। समय आ गया है कि बुद्धिमान कहलाने वाले इतिहास पढ़ें और देखें कि परमेश्वर मानव इतिहास में काम करता है। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि लोग मुझे सिरफिरा कहेंगे, परंतु मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि यिर्मयाह भी ऐसा ही था। आज 21वीं शताब्दी के दृष्टिकोण से सिद्धिक्याह निर्बुद्धि था और बुद्धिमान लोग, सभ्य लोग और परमेश्वर का त्याग करने वाले लोग मूर्ख थे। अतः मुझे यदि जागृति विरोधी कहा जाए तो मुझे कोई आपत्ति न होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बहुत अच्छी संगति में हूं। मैं तो यिर्मयाह के समान परमेश्वर में विश्वास करूंगा। लेकिन आप किसके समान विश्वास करेंगे? आपका विश्वास किस प्रकार का विश्वास है? इसे जांचने की आवश्यकता है। मित्रों, यहां पर अध्याय 39 का भी समापन होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अध्याय 40 से 42 तक, जिसका विषय है यिर्मयाह देश में बचे हुओं के मध्य भविष्यवाणी करता है। इन तीन अध्यायों में हम देखेंगे कि यिर्मयाह देश में बचे हुओं के मध्य भविष्यवाणी करता है। वे गरीब, अंधे, विकलांग, अपराधी और कठोर मन के लोग थे। यिर्मयाह ने उन्हीं के साथ रहने का चुनाव किया। उसके पास उनके लिए संदेश था। आइए हम देखें यिर्मयाह की मुक्ति। यिर्मयाह की पुस्तक 40 अध्याय उसके 1-4 पद में लिखा है, जब अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को रामा में उन सब यरूशलेमी और यहूदी बंदियों के बीच हथकड़ियों से बंधा हुआ पाकर जो बेबीलोन जाने को थे छुड़ा लिया, उसके बाद यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को उस समय अपने पास बुला लिया और कहा, इस स्थान पर यह जो विपत्ति पड़ी है वह तेरे परमेश्वर यहोवा की कही हुई थी। जैसा यहोवा ने कहा था वैसा ही उसने पूरा भी किया है। तुम लोगों ने जो यहोवा के विरुद्ध पाप किया और उसकी आज्ञा नहीं मानी, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब मैं तेरी इन हथकड़ियों को काटे देता हूँ और यदि मेरे संग बेबीलोन में जाना तुझे अच्छा लगे तो चल, वहां मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, और यदि मेरे संग बेबीलोन जाना तुझे न भाए तो यहीं रह जा, देख सारा देश तेरे सामने पड़ा है, जिधर जाना तुझे अच्छा और ठीक जचे उधर ही चला जा। मेरे प्रियो, नबूकदनेस्सर ने यिर्मयाह को पूरी स्वतंत्रता दी थी कि वह जो चाहे करे। वह चाहता तो बंदी बनाए हुए यहूदा वासियों के साथ रह जाता, परंतु उसने वहां जाना न चाहा। मेरे विचार में यदि वह बेबीलोन चला जाता तो उसे सम्मान ही प्राप्त होता, परंतु यिर्मयाह अपने देश बंधुओं का कष्ट नहीं देख सकता था। जैसा कि लिखा है, बेबीलोन की नहरों के किनारे बैठकर वे सियोन को स्मरण करके रो रहे थे। जी हाँ, यिर्मयाह उनके साथ जाना नहीं चाहता था, उन्होंने उसे तुच्छ जाना था। बेबीलोन में परमेश्वर ने एक और भविष्यद्वक्ता को उभारा, यहेजकेल। यिर्मयाह ने तो अपने देश में गरीबों के साथ रहने का चुनाव किया था, उस देश का सच्चा प्रेमी कौन था? यिर्मयाह। जी हाँ, सच्चा देशभक्त कौन था? यिर्मयाह। किसमें जनता के लिए हार्दिक प्रेम था? यिर्मयाह के मन में था। अब यह स्पष्ट हो गया है। आपको स्मरण होगा कि यिर्मयाह ने उनसे विनती की थी कि वे नबूकदनेस्सर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें। मेरे विचार में यदि वे परमेश्वर की बात मान लेते तो उन्हें बंदी बनाकर नहीं ले जाया जाता। उन्हें भी यिर्मयाह के समान नबूकदनेस्सर से दया का व्यवहार किया जाता और अपने ही देश में रहने की अनुमति प्राप्त होती। पद 8 में इश्माइल का उल्लेख है, जो नबूकदनेस्सर द्वारा यहूदा पर नियुक्त गदल्याह को घात करने का षड्यंत्र रचता है। आइए देखें गदल्याह की हत्या। अध्याय 41 में गदल्याह और उसके कसदी एवं यहूदी साथियों की निरशंस हत्या का विवरण दिया गया है। इश्माइल मिस्पाह के निवासियों को पकड़कर अम्मोनियों के देश में ले जाता है, परंतु योहनान उसका सामना करके उन्हें छुड़ा लाता है, परंतु बेबीलोन के राजा के भय से वह मिस्र पलायन करने की योजना बनाता है, क्योंकि बेबीलोन का प्रतिनिधि गदल्याह मारा गया था। आइए हम देखें यिर्मयाह से भेंट। अध्याय 42 में हम देखते हैं कि योहनान और अन्य सब हाकिम यिर्मयाह के पास आते हैं। यह बड़ी रोचक बात है कि वे इन असाधारण परिस्थितियों में यिर्मयाह से राय लेते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आगे क्या करें, क्या वे वहीं रहें या वहां से चले जाएं? यदि जाएं तो कहां जाएं? आइए आप मेरे साथ पढ़िए यिर्मयाह की पुस्तक 42 अध्याय 1-3 पद। लिखा है, तब कारेह का पुत्र योहनान, होशायाह का पुत्र यजन्याह, दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के निकट आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चलें और कौन सा काम करें। मेरे मित्रों, यहां पर ये देखने और सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है या नहीं? आप सोचेंगे कि वे अब परमेश्वर की संगति में रहेंगे। उन्होंने परमेश्वर की वाणी सुनने की प्रतिज्ञा की है। लेकिन क्या होता है, आइए पढ़ें। यिर्मयाह की पुस्तक 42 अध्याय के 4 पद में लिखा है, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है, देखो मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुमसे कोई बात न छिपाऊंगा। वे यिर्मयाह के पास इस विश्वास से आए थे कि वह सत्य के संबंध में विश्वास योग्य है। जी हाँ, परमेश्वर की ओर से वचन पाने वाला चाहे मंच पर, चाहे रेडियो पर, चाहे साबुन के डब्बे पर खड़ा होकर प्रचार करे, उसे बुद्धि और चतुराई दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसे मनुष्य को प्रसन्न करने वाली बातों की अपेक्षा, मीठे वचन सुनाने की अपेक्षा, सीधा सीधा परमेश्वर का वचन सुनाना चाहिए। प्रचार मंच जब केवल सकारात्मक तक सीमित हो और नकारात्मक को अनदेखा करे तो तो वह केवल वही सुनाता है जो श्रोताओं को पसंद होता है। पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा था, दूसरा तीमुथियुस के पत्री 4 अध्याय उसके 3 और 4 पद में, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। मेरे विचार में आज दुर्भाग्य से प्रचार मंच की यही स्थिति है। यही कारण है कि आज का प्रचार मंच बहुत दुर्बल है और हमारे आज के समय में मनुष्य के लिए वहां संदेश नहीं है। यदि आज प्रचार मंच यिर्मयाह की नाई परमेश्वर का वचन सुनाए, अर्थात कुछ न छोड़ते हुए ज्यों का त्यों परमेश्वर का संदेश सुनाए, तो परमेश्वर का वचन आज फिर से प्रभावी हो जाएगा। मेरे मित्रों, आज हम किस प्रकार का वचन सुनना चाहते हैं? क्या हम यिर्मयाह के समान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, या अपने पसंद के समाचार और संदेश को सुनना चाहते हैं? आज निर्णय मुझे और आपको लेना है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
बुलाता है मसीह, सुन तू उसकी आवाज, देगा जीवन नया, रखेगा कदमों के पास। बुला तेरे से जाते है बहुत ही।